नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाउदू फ़ाउदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। मिलकर पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाली किताब। कुरान पाक के मुतालिक ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको कुरान पाक के मुतालिक दिलचस्प बातें बताते हैं। कुरान पाक से रिलेटेड जो फ़ज़ाइल हैं, बरकतें हैं और शान है, वो आपको बताते हैं। कुरान पाक बहुत शान वाली किताब है। दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक हर जगह, चाहे वो सफ़ेद रंग का हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे वो कोई से भी मुल्क का हो, लेकिन वहाँ पे मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं। यानी कुरान पाक वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी बरकत है और सबसे ज़्यादा इसका अदब है। तो इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। यही मालूमात देने के लिए आपके सामने हम मौजूद हैं। आपने तवज्जो के साथ पूरा प्रोग्राम आपने देखना है, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। हमारे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट आज आपके लिए लेकर आए हैं और आखिरी सेगमेंट के अंदर कौन सा मुकाबला होने वाला है? जी हाँ, हमारे प्रोग्राम के अंदर आखिर में एक सेगमेंट होता है, उसमें मुकाबला भी होता है। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की एक फ़दीलत। प्यारे बच्चों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि दुरूद कम पढ़े या ज़्यादा। यानी हमें पता चल गया कि रहमतें तो नाजिल होती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे, तो जो समझदार होगा वो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेगा। एक मरतबा पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है तजवीद क्लास। इस सेगमेंट के अंदर हम कुरान पाक की सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और फिर एक या दो कायदे समझते हैं जिससे हमारे कुरान पाक पढ़ने के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और हम दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाते हैं। बढ़ते हैं तिलावत की जानिब। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद हैं, आज हमें कुरान पाक की चंद आयात की तिलावत सुनाएंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر
in
پیارے بچوں, قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت آپ نے سنی اور یہ آیتیں ہمارے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. آج میں آپ کو دو قاعدے سمجھاؤں گا. پہلا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا, اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے, لیکن پہلا قاعدہ سمجھتے ہیں. اچھا, نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟
چار.
آپ سب نے میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہنا جو میں کہتا رہوں, ٹھیک ہے؟ پہلا ہے اظہار. کون سا ہے؟ دوسرا ادغام. تیسرا
اقلاب.
اقلاب. اور چوتھا اخفا. اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب, چار ہو گئے. یہ چار قاعدے ہیں. یہ ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. آج آپ کو میں بتاؤں گا اقلاب کے بارے میں. دیکھیں, نون ساکن اور تنوین کیا ہے. یہ ہے نون ساکن. کیا مطلب؟ یہ نون ہے اور نون کے اوپر جزم ہے, لہذا اس کا نام ہے نون ساکن. یہ لام ہے نا, لام, تو لام کے اوپر جزم آ گئی تو اس کا نام ہے لام ساکن. اسی طرح یہ یا ہے, یا, یا کے اوپر جزم ہے, یہ ہے یا
ساکن.
ہا کے اوپر جزم تو کیا نام ہو گیا؟ ہا
ساکن.
اتنا سمجھ گئے آپ؟ تو یہ نون ساکن کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے, یہ ہو گیا نون ساکن. تنوین کیا ہے؟ یہ دو زبر اور جو دو زیر ہوتا ہے, دو زیر اور یہ رہا دو پیش. دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. تو جب بھی بچوں کہیں بھی آپ نون ساکن دیکھیں, جیسا بھی آپ نے دیکھا, یا تنوین دیکھیں, تنوین میں دو زبر دیکھیں, دو زیر دیکھیں, یا پھر آپ دو پیش, اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با لکھا ہوا یا نہیں. کون سا حرف تلاش کرنا ہے؟
با.
با تلاش کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ کو با نظر آ جائے, آپ فوراً کہہ دیں یہاں پہ اقلاب ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب کا قاعدہ ہوگا. حمزہ, قاف, لام, الف, با, اقلاب. یہ آ گیا, آپ کو دکھاتے ہیں با. یہ یہاں پہ تنوین کے بعد با نہیں ہے, یہاں پہ بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں, دیکھتے تو یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. نظر آ رہا ہے؟ تنوین ہے یہاں پہ, عین کے اوپر تنوین, اور تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟
با.
نہ جیم, نون, سین, شین نہیں, بلکہ با لکھا ہوا ہے. تو تنوین کے بعد جب حرف با لکھا ہوا آتا ہے تو اس قاعدے کا نام ہے اقلاب. تو اقلاب تو قاعدہ ہے, لیکن یہاں کرنا کیا ہے وہ سمجھیے گا. کرنا یہ ہے کہ یہ جو نون ساکن ہو, یہاں پہ نون ساکن نہیں ہے بلکہ یہاں تنوین ہے. اور آپ کو پتا ہے جو تنوین ہوتا ہے, تنوین کی بھی جو آواز ہے وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. تنوین کے آخر میں نون ساکن ہوتا ہے نا, جیسے با دو زبر بن بن, آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. با دو زیر بن بن, آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا, بن بن بن. تو یہ جو تنوین ہے یہ بھی نون ساکن ہوتا ہے. تو تنوین میں جو نون ساکن ہے, یا جہاں پر نون ساکن ہو اور وہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با ہو, تو اس نون ساکن کو آپ نے میم سے چینج کر دینا ہے. کس سے تبدیل کر دینا ہے؟
میم سے.
اب اس کو ہم ایسا نہیں پڑھیں گے سمیعاً بصیرا, یہ غلط ہے, بلکہ اب یہ جو نون ساکن ہے یا جو تنوین ہے اس کو میم بنا دیں گے سمیعاً
بصیرا.
اب میں نے عن پڑھا ہے یا ام پڑھا ہے؟
عم.
اسی لیے یہ جو قاعدہ ہے نا کہ ہم نے یہاں پہ نون ساکن کو کیا بنا دینا ہے؟ میم. یہ چھوٹا سا میم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, نظر آ گیا چھوٹا سا میم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ چھوٹا سا میم دیکھیں تو یہ پہچان ہے اس بات کی کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدلنا ہے. اسی لیے حمزہ بھائی نے جب تلاوت کی تھی نا, تو حمزہ بھائی تلاوت کرتے ہوئے اس کو یوں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ سمیعاً بصیراً. ام ایسے پڑھتا, عن نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ سمجھے یا نہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے کون سا حرف تلاش کرنا ہے؟
با.
اتنی بات آپ سمجھ گئے, ویری گڈ. اچھا, با تلاش کرنا ہے تو کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, نون ساکن یا تنوین میں کیا کرنا ہے؟ کچھ چینجنگ کرنی نہیں کرنی؟
جی کرنی ہے.
کرنی ہے, کیا کرنا ہے؟
میم سے بدل دینا.
میم سے بدلنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے, میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے. یعنی اس کو پڑھنا ہے سمیعاً. जो ड्यूरेशन है गुन्ना की वो एक अलिफ है, समी हम हम थोड़ी देर तक, ठीक है। चले आपको अगला कायदा समझाते हैं, और अगला कायदा है अगली आयतों में। जी अगली आयतें कौन सी हैं? आयत नंबर 4 में आपने लफ्ज़ सुना था हमजा भाई से, सलासिला, नज़र आ रहा है? इसके ऊपर ये गोल दायरा बना हुआ है, नज़र आ गया? ये देखें अलिफ है सलासिला में, आखिर में इसके ऊपर गोल दायरा है। इसका कायदा ये है कि ये जो गोल दायरा है अलिफ के ऊपर, इस अलिफ का नाम है ज़ायद अलिफ, एडिशनल अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ, ये ज़ायद अलिफ है। इस अलिफ का कायदा है, वो कायदा है कि जब आप इस अलिफ पर वक्फ करेंगे, क्या करेंगे, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आपने वक्फ किया, हमजा भाई ने भी वक्फ किया था, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ वक्फ करेंगे तो आप इस अलिफ को पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस अलिफ को ना पढ़ें, दोनों कर सकते हैं। अलिफ को पढ़ना चाहें तो अलिफ को पढ़ें, पढ़ेंगे तो खींचेंगे सलासिला, हमजा भाई ने खींचा था, और अगर आप अलिफ को नहीं पढ़ेंगे तो फिर वक्फ में खींचेंगे भी नहीं, क्योंकि अलिफ नहीं है ना। तो वक्फ में आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन वसल में, वसल का क्या मतलब होता है? वसल का मतलब है आप यहाँ पर वक्फ नहीं कर रहे, बल्कि पढ़ते हुए आ रहे हैं, और पूरा आपने एक ही सांस में पढ़ दिया है, बीच में आप रुके नहीं है, ये है वसल। तो अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने यहाँ पे वक्फ नहीं किया, आप नहीं रुके, आपकी सांस नहीं टूटी, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब आपने अलिफ को हरगिज़ हाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि आप बग़ैर अलिफ पढ़े, आप बग़ैर खींचे आगे पढ़ते हुए चले जाएँ, क्योंकि ये ज़ायद अलिफ है, और ज़ायद अलिफ की पहचान क्या है? कुरान पाक में इसके ऊपर गोल सा दायरा बना हुआ होता है, और सलासिला का मैंने आपको बता दिया कि कब पढ़ना है अलिफ को और कब अलिफ को नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों कितना अहम कायदा है ना ये वाला, ज़ायद अलिफ वाला, कि कहाँ अलिफ को पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना। आपने आज के प्रोग्राम में इस बात को सीखा है, हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और दूसरों को बताना है कि ज़ायद अलिफ भी एक चीज़ है। हाँ कुरान पाक में नॉर्मल अलिफ तो हैं, लेकिन ज़ायद अलिफ भी है और इसका भी एक कायदा है। तो बच्चे कुरान पाक सीखते हैं और कायदा सीखते हैं और फिर कुरान पाक पढ़ते हैं, तो बच्चों उनसे गलती नहीं होती है। जो बग़ैर सीखे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुरान पाक हमें सीख कर तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। प्यारे बच्चों, सेगमेंट के अंदर हम आपको कुरान पाक के अंदर मौजूद जो सूरतें हैं, आयतें हैं, उनमें से किसी न किसी सूरत के बारे में उसकी फजीलत बताते हैं कि इस सूरत की क्या फजीलत है। आज मैं आपको जिस सूरत की फजीलत बता रहा हूँ वो है कुरान पाक की 37वीं सूरत, सूरत नंबर 37। कौन सी सूरत नंबर
37?
और सूरत का नाम है सूरह सौफात। क्या नाम है? जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते रहते हैं ना, उनके सामने सूरतों के नाम भी आते रहते हैं, उनको याद भी होता है। तो सूरह सौफात की क्या फजीलत है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन, कौन से दिन, पीर वाले दिन या मंगल के दिन? जुमे के दिन। जिसने जुमे के दिन सूरह यासीन और सूरह सौफात की तिलावत की, कौन सी दो सूरतों की बात हुई है?
सूरह यासीन और
सौफात, याद हो गया भाई आपको। इन दो सूरतों की तिलावत की, फिर उसने अल्लाह पाक से कोई सवाल किया, तो अल्लाह पाक उसका वो सवाल पूरा फरमा देगा। कितनी प्यारी फजीलत है, तो कमाल हो गया। बच्चे कितनी सारी चीज़ें चाहते हैं ना भाई, अल्लाह पाक से सवाल कैसे करते हैं? दुआ मांग के सवाल करते हैं ना, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, है ना। अगर हमारा घर नहीं है, या अल्लाह हमें हमारा घर दिला दे, या अल्लाह हमें सेहत दे दे, दुआ मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, तो ऐसे सवाल करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, बहुत सारी दुआएँ होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, कितनी सारी दुआएं हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, और आप चाहते हैं कि ये दुआ कबूल हो जाए। तो कितना अच्छा तरीका बता दिया, आप जुम्मे के दिन, जुम्मे का इंतज़ार करें, जो जुम्मे का दिन होता है वो मुसलमानों की ईद का दिन होता है, नॉर्मल दिन नहीं है, वो ऐसे ही गुजार दें नहीं, एहतमाम करना चाहिए, مسجد میں جلدی جانا چاہیے, بیان سننا چاہیے, اور جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے جمعہ کے دن آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے, اور سورہ
صافات
بعد آپ اللہ پاک سے خوب دل کھول کے مانگیں, خوب دعا, یا اللہ یہ بھی دے دے, یا اللہ یہ بھی عطا فرما دے, وہ بھی عطا فرما دے, تو پھر کیا ہوگا, اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے گا. جو سوال آپ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا اور آپ کا سوال ضرور پورا فرمائے گا. تو اللہ کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنے اور جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں آپ بھی اس پر عمل کی نیت کر لیجیے اور کہہ دیجیے انشاءاللہ عز وجل. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن.
قرآن میرا نور والی کتاب.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کشتی. آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ اہم باتیں سنتے ہیں اور یہ بھی سنیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کس طرح آیا ہے. پیارے بچوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, اللہ پاک کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتے. 950 ایئرز آپ لوگوں کو ایمان لانے کا کہتے رہے, مگر آپ کی قوم ایمان نہیں لائی, بلکہ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے اور تکلیفیں دیتے رہے, اور آپ پر صرف 80 لوگ ایمان لائے. جب آپ علیہ السلام نے یہ فیل کیا کہ اب باقی کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی, اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے, اور آپ کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے, جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے. اور پیارے بچوں یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر ایسی چیز بنانے کا کام شروع کر دیا جو چیز آج تک کسی نے نہیں بنائی تھی, اور وہ چیز بوٹ تھی. یہ دنیا کی پہلی بوٹ تھی جسے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. یہ کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی, اور اس میں 3 فلور تھے. کشتی میں 3 فلور بنائے گئے تھے. فرسٹ فلور پر شکاری جانور پرندے اور زمینی کیڑے تھے, سیکنڈ فلور پر دوسرے جانور تھے, اور تھرڈ فلور پر وہ مسلمان تھے جو ایمان لائے تھے. جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی, اور آپ علیہ السلام کو الگ الگ طریقوں سے پریشان کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے, لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی بنانے میں مصروف رہے. اور یہ کشتی 1-2 سالوں میں نہیں بلکہ یہ بوٹ تقریباً 100 ایئرز میں تیار ہوئی. پیارے بچوں جب یہ کشتی تیار ہو گئی, سب اس میں سوار ہو گئے, تو ایک طوفان کا عذاب آ گیا. جو لوگ کشتی میں موجود تھے اور جو جانور کشتی میں تھے وہ سب بچ گئے. اس کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا. تقریباً 150 دن یہ کشتی سفر کرتی رہی. اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کے آس پاس 7 چکر بھی لگائے, اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی, اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا. پیارے بچوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا, تو اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ, اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, بے شک انہیں ضرور غرق किया जाएगा। और नूह कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब भी कोई इनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो, तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अज़ाब आता है जो इसे ज़लील और रुस्वा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अज़ाब उतरता है। प्यारे बच्चों, आज हमने किश्ती के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
प्यारे बच्चों, फिर आज आपने इस सेगमेंट के अंदर किश्ती के बारे में सुना, और किश्ती कौन सी? दुनिया की सबसे पहली किश्ती। और अभी आपने कैसी इंटरेस्टिंग बात सुनी ना, कि जब हजरत नूह अलैहि सलाम ये किश्ती बना रहे थे तो इससे पहले कभी किश्ती बनी नहीं थी, और समंदर के ऊपर कोई चलने वाली चीज़ ईजाद ही नहीं हुई थी, चीज़ें तो ज़मीन पे चलती थी। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या बना रहे हो, समंदर पे कौन सी चीज़ चलती है, ऐसा उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन देखें कि वो किश्ती बनी, और आज कितनी सारी किश्तियाँ, बड़े बड़े जहाज, ये भी अल्लाह की कुदरत है। आप पानी में सिक्का रखते हैं तो सिक्का डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी बड़ी किश्तियाँ वो समंदर पर चल रही होती हैं। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह जिसको चाहे डिबो दे और जिसको चाहे समंदर पे चला दे। तो ये बातें हमें बताती हैं कि अल्लाह पाक के पास बहुत ताकत और कुदरत है। हमें कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी, फरमा बरदारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक बहुत ताकत वाला है, बहुत कुदरत वाला है। और ये जो चीज़ें किश्तियाँ, इनको देख के अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि किश्ती के ज़रिए बहुत सारा सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता है, मुल्कों की ज़रूरत पूरी होती है। ये भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना कि कुरान पाक में किश्ती का किस तरीके से जिक्र हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है। आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर किसी न किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपने हमारे प्रोग्राम को देखना है और इस सेगमेंट को स्पेशली देखना है, तो आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफा होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है जवाब ढूंढें। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है, दो टीमों का मुकाबला होता है। मेरे दाएँ जानिब सीधे आते हैं टीम ए, और मेरे दिल की जानिब है टीम बी। वो देखिए, आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, और बोर्ड पर छः सवालात आपको नज़र आ रहे हैं, यानी छः सवालात नहीं है, सवाल तो मेरे पास हैं, छः नंबर नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके आगे आपने जवाबात लगाने, मेरे पास सवालात लिखे हुए हैं और रेड बास्केट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हैं जवाबात। आपने कोई लिखने नहीं है, बस मेरा सवाल गौर से सुन के सही जवाब तलाश करना है, और वो सही जवाब निकाल के आपने बोर्ड पर थंबपिन कर देना है, वहाँ लगा देना है। तो जिस टीम के ज़्यादा सही जवाबात होंगे वो टीम जीत जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और जिस टीम के जवाबात सही नहीं होंगे वो टीम पीछे रह जाएगी। लेकिन सुस्ती से नहीं करना ये, वरना फिर भी पीछे रह जाएंगे। चुस्ती से, जोश के साथ, मगर होश से आपने मुकाबला करना है। तो टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से आप आ जाएं, आप आ जाएं, वहाँ चले जाएं। और टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से आप आ जाइए, चले वहाँ पहुँच जाइए, आप वहाँ चले जाएं, मुकाबला करना ना। माइक रख दें, इधर रख दें, चलें अपनी अपनी जगह पे, ये आ गए हैं और तैयार हैं मुकाबले के लिए। जी, पहला सवाल, सूरह 3 की पहली आयत में किस फल का जिक्र आया है? जवाब बास्केट में है, लेकिन सही जवाब तलाश करना है, जवाबात तो बहुत सारे हैं। किस फल का जिक्र आया है? अल्लाह ऊपर, टीम बी ने तो फौरन निकाल दिया, और टीम ए भी पीछे नहीं है, फौरन जवाब निकाल दिया है। अब दोनों ने निकाल तो दिया, जवाब दुरुस्त है या नहीं वो आपको बाद में बताएंगे। सवाल नंबर 2, कुरान पाक का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? इतना इंटरेस्टिंग, पहला लफ्ज़ कुरान पाक का जो नाजिल हुआ था वो कौन सा है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा से शुरू करते ना कुरान पाक, लेकिन आपको पता चलेगा इस पर। दोनों ने निकाल दिया है, क्या बात है। सवाल नंबर 3, ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, तर्जमा है, मुझे इस शहर की कसम। इस आयत में अल्लाह पाक ने किस शहर की कसम इरशाद फरमाई है? दोनों माशाल्लाह, टीम ए और बी, दोनों की तलाश जारी है, और बहुत चुस्ती के साथ माशाल्लाह तलाश कर रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों, जल्दी जल्दी तो करना है, लेकिन सही जवाब तलाश करना है। अच्छा, अगला सवाल है, सूरह फजर के शुरू में कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई गई है? जी, चलें, जवाब की तलाश जारी है, बल्कि फ़ौरन निकाल भी लिया है, और दोनों माशाल्लाह सेम सेम थोड़े जवाब तलाश करने, देख तो नहीं रहे आप टीम बी को, टीम बी आप उनको तो नहीं देख रहे, कन्फर्म देखना नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, तवज्जो से सुने, कुरान पाक में कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, कितनी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। माशा अल्लाह अच्छी मालूमात है आपको और मालूमात होनी चाहिए। दोनों ने जवाब तलाश कर लिया है, लगा भी दिया है, टीम ए और बी दोनों से आखिरी सवाल है और ये है छठा सवाल, ज़िबा होकर ज़िंदा होने वाले परिंदों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है। अब एक ही आंसर है, पॉसिबल है कि यही दुरुस्त हो या हो सकता है गलत हो, आपने ये वाला आंसर कहीं और लगा दिया हो, वो तो अभी आपको सही जवाब बताएंगे तो पता चलेगा। टीम ए और बी दोनों ने जवाब तलाश कर लिए हैं, अब देखते हैं कि क्या किया है आप लोगों ने। जी हाँ, टीम ए ने पहला जवाब लगाया है इंजीर फल का, जवाब दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह।
दूसरा जवाब है इकरा, ये भी जवाब दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह।
तीसरा जवाब है मक्का शरीफ की, हाँ मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाया, ये जवाब भी दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह।
और चौथे सवाल का जवाब था कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई, 10 रातों की, ये भी दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह।
अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक में कितनी बार आया है, 114 इन्होंने लिखा है, 114, ये भी जवाब दुरुस्त। और जिंदा हो जाने वाले परिंदों का जिक्र किस पारे में है, पारा 3 में, ये जवाब भी दुरुस्त है। पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 260 में इन परिंदों का जिक्र आया है। तो टीम ए ने तो 6 के 6 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए, अब टीम बी का देखते हैं। टीम ए का पहला जवाब ठीक है दुरुस्त, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी जवाब सही है, चौथा भी जवाब सही, पांचवा भी सही और छठे सवाल का जवाब भी सही दे दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा मुकाबला किया, जल्दी जल्दी किया और जल्दी जल्दी जो है अपने सवाल के जवाब दिए और इस तरीके से दोनों की दोनों टीमें जीत गई हैं। आ जाइए अपनी जगह पे, आ जाइए आप भी अपनी जगह पे आ जाएं। प्यारे बच्चों, मुकाबला करने का मकसद और मुकाबला करवाने का मकसद ये था कि आपकी दिलचस्पी पैदा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिले, इस तरीके से सीखने को मिले कि वो आपको याद भी रहे। तो आपने मुकाबला भी देखा और 6 सवालों के जवाब भी आपने सीख लिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अलल हबीब।
नूर वाली किताब।